ट्रिपल लेबर मूलतः एस्पिरेशन रिजेक्शन सरेंडर, अगर आप इस पे जाते हैं तो मूल तो यही है. किंतु इसके अलावा फिर लोग पूछते हैं मेडिटेशन कैसे करना है, मेडिटेशन की क्या प्रोसेस है. ये ओल्ड स्पिरिचुअलिटी का तरीका है, और ये नहीं कि इसका औचित्य नहीं है, औचित्य है, क्योंकि हम ओल्ड से न्यू की ओर जा रहे हैं तो हम ओल्ड का ही संभल लेते हैं. लेकिन किसी भी चीज़ में ये तीन चीज़ें बैकग्राउंड में कार्य करती हैं, किसी भी उपलब्धि में वास्तव में अगर देखा जाए. और सबसे पीछे जो सबसे पावरफुल है वो है उसका सिद्धांत, प्रिंसिपल क्या. अगर आपका प्रिंसिपल सही है तो मार्ग मिल जाएगा आपको, पता. जैसे लोग कहते हैं ना कि ये दिशा, इधर जाना है वहां जाना है, ये इसका जैसे सिद्धांत हो गया, अब आप मार्ग ढूंढोगे इधर. दूसरा है कि उसका मेथड क्या है, क्या उपाय हैं, क्या तरीके हैं जो हम अपनाएंगे. और तीसरा है कि उसकी प्रोसेस क्या है, योग की कैसे प्रोसेस, कैसे कार्य करती है इस योग में, मतलब हमें क्या अनुभव होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे परिवर्तन आएगा. तो ये तीनों चीजें जाननी आवश्यक हैं. तो इस योग के मूल सिद्धांत में ये कैसे ऑपरेट करता है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का बटन कहां पर है, जिसके बिना आप घंटों मेडिटेशन कर लो, इट वॉन्ट बेयर रिजल्ट. ये शेरविंद माता जी की वाणी से बार बार आप, मूल जो चीज है उसमें है श्रद्धा और संकल्प. और थोड़ा सा उसको हम पढ़े, जिस भाव से, जिस श्रद्धा को लेकर के, जिस संकल्प को लेकर के किया जा रहा है, अंत में वही फलित होता है. कोई व्यक्ति है जो ध्यान कर रहा है, ध्यान कर रहा है लेकिन इस भाव से मुझे भगवान मिल जाएंगे या मेरे घर का भला हो जाएगा, कल्याण होगा बाहरी रूप में, तो आपको उतना ही मिलेगा. भगवान भी अगर आएंगे तो वो उतना ही देंगे. और अगर इस भाव से, इस मनोवृत्ति से, इस श्रद्धा के साथ, इस संकल्प के साथ कि संसार का कल्याण हो, या इसके साथ कि संसार में वो नई संभावना प्रकट हो, दिव्य संभावना, मेरे में, तुम्हारे में, ये नहीं, सृष्टि के अंदर, तो अंत में हम उसी को रियलाइज करेंगे. मार्ग भी वैसे ही होगा, जितना ऊंचा संकल्प उतनी बड़ी कठिनाई, जितना सीमित संकल्प उतनी ही सीमित हमारी कठिनाइयां होती हैं, चैलेंजेस. तो यहां थोड़ा सा हम उससे पढ़ेंगे कि इस योग के मूल सिद्धांत में क्या है. ये सिंथेसिस ऑफ योग से है. The eventual omnipotence of tapas and the infallible fulfillment of the idea are the very foundation of all yoga. Tapas. तपस आंख मूंद के हाथ ऐसे करके बैठना नहीं है, वो एक पार्ट है. तपस है किसी भी ऊर्जा को जब हम घनीभूत करते हैं, कंसेंट्रेट करते हैं, तो वो ताप पैदा करती है. ताप शब्द है ना, हीट. तो वो जो ताप होता है वो नई चीजों को जन्म देता है. ये तो हर व्यक्ति जानता है. चूजा कैसे बाहर आता है, संभावना के रूप में तो है वो अंडे के अंदर, लेकिन अब माँ उसको, मदर हैन उसके ऊपर बैठ के उसको सेती रहती है, तो उसके अंदर जो ऊर्जा है वो और कंसंट्रेटेड घनीभूत हो रही है, और वो अंत में वही तपस उसके अंदर जनरेट करता है. जो चीज में यहाँ जीन्स की बात, अगेन वो प्रोसेस की बात हो गई, मूल चीज क्या है वो उसको बाद में तैयार होगा और बाहर निकलेगा और उड़ेगा. तो तपस, हृदय का तपस क्या है, सारे भावों को केंद्रित करते जाना, घनीभूत करते जाना ऑन द मदर. इस योग में माइंड का तपस क्या है, उस एक ज्ञान के लिए, बाकी सारी चीजों को ये नहीं समझ लेना कि यही ज्ञान है, व्हाट्सएप पे जो मैंने पढ़ लिया या किसी टॉक में सुन लिया, नहीं. ज्ञान तो एकत्व की ओर ले जाता है, उसी प्रकार से हमारे कर्म की ऊर्जा. तो यहां तपस से वो है. और जो आइडिया, अब इसके बारे में शेरविंद आगे स्पष्ट करते हैं, इन मैन वी रेंडर दीज टर्म्स बाई विल एंड फेथ. एक बड़ी सिंपल सी कहावत है, मैं इसको 100% मानता हूं जीवन में, देखा है मैंने, वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे. और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं मेरी इच्छा तो है मैं नहीं कर पा रहा हूं, मतलब आपकी विल नहीं है पूरी तरह, डिवाइडेड है अंदर में, आपके अंदर विल के अंदर एक विभक्ति है. अगर विल है तो रास्ता मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चट्टाने तोड़ करके मिलेगा. सो विल, द ओमनीपोटेंस ऑफ द विल. सो तपस क्या है, विल. और इसी को अटैक, ये जितनी भी फोर्सेस हैं होस्टाइल एडवर्स, ये दो चीजों को ही अटैक करती हैं, ये है संकल्प को और श्रद्धा को। तो ये दो चीजें वो प्राइजलेस ट्रेजर है जिसको लेके व्यक्ति हर जगह जाता है, और अगर वो धूमिल पड़ रही हैं तो आप बाकी कुछ भी कर लीजिए, आपके अंदर जो मूल स्रोत है आगे बढ़ने का वो समाप्त हो रहा है। तो इनको गार्ड करना है। माने कहा है कि फेथ एक ऐसी ऐसा खजाना है अमूल्य की, जिसको हमको कुबेर के खजाने से अधिक बहुमूल्य समझ करके हमको गार्ड करना चाहिए। यहां तक वो कहते हैं गीता में भी है कि ऐसे लोगों से ना मिलो जो हृदय के अंदर अश्रद्धा का भाव डालते हैं। ऑफ कोर्स जब आपके अंदर श्रद्धा का दिया पूरी तरह जलने लगता है तो इट डजंट मैटर, लेकिन फिर भी। सो यहां पर फेथ और विल, ए विल दैट इज इवेंचुअली सेल्फ इफेक्टिव बिकॉज इट इज ऑफ द सब्सटेंस ऑफ नॉलेज, एंड ए फेथ दैट इज द रिफ्लेक्स इन द लोअर कॉन्शियसनेस ऑफ ए ट्रूथ और रियल आइडिया येट अनरियलाइज्ड इन द मैनिफेस्टेशन। इट इज दिस सेल्फ सर्टेनिटी ऑफ द आइडिया, देखिए, विच इज मेंट बाय द गीता व्हेन इट सेज यो यश श्रद्धा स एवश्च, वट एवर इज ए मैंस फेथ और द श्योर आइडिया इन हिम दैट ही बिकम्स। इसके लेटर्स एंड योगा में बहुत उदाहरण देते हैं। यदि हमारे अंदर ये श्रद्धा है और ये श्योर आइडिया कि हम हीलिंग के लिए, ठीक करने के लिए मरीजों को एक नई विधा हो सकती है जिसमें आपको ये दवाइयां लेना और सर्जरी करने की आवश्यकता ना रहे, तो आप यू विल एंड अप डिस्कवरिंग सेल्फ हीलिंग, शेरविंद के वर्ड्स हैं। लेकिन अगर आप केवल मन मन में अरे होना चाहिए नहीं होना चाहिए नहीं यही है जो अल्टीमेट है, देन इट डजंट वर्क। पर अगर अंदर में ये संकल्प है और श्रद्धा है कि इट कैन बी, और सारी डिस्कवरीज ऐसे ही हुई हैं, तो आप अंत में यू विल एंड अप डिस्कवरिंग वेज ऑफ हीलिंग जो आपको पता भी नहीं था, मार्ग खुलता चला जाएगा। श्रद्धा और संकल्प का इतना इंपॉर्टेंस है, और ये खासकर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इवन माताजी शेरविंद के कई अनुयायियों में देखता हूं, वो माँ में तो श्रद्धा रखते हैं लेकिन माँ की वाणी, शेरविंद की वाणी में उनको श्रद्धा नहीं है, उनको वापस वहीं पर चले आते हैं कि नहीं नहीं हमको पुराने तरीके से ही काम करना है। ये सच है कि हमको नहीं अभी नया तरीका मालूम, लेकिन यदि हमारे अंदर श्रद्धा रही और संकल्प रहा तो वो नए तरीके नई विधाएं डेवलप करती चली जाएंगी। और यही देखिए कि माताजी ने आश्रम में कैसे ट्रेन किया लोगों को। मैं जानता हूँ जयंती भाई को, जब वो ये मणिबहन के ब्रदर वो आए तो माँ ने उनको काम क्या दिया, उन्होंने कहा कि टीच फ्रेंच, तो उन्होंने कहा मुझे तो फ्रेंच आती नहीं है माँ से कोई भूल हो गई होगी, लोग भी तो एक से एक ना माँ ने कहा नो नो यू लर्न एंड टीच फ्रेंच। अब उन्हें सीखी। मैं आपको बताता हूं, मैं उनके स्टूडेंट्स को जानता हूं, आज तक स्टूडेंट्स कहते हैं इनसे अच्छा फ्रेंच टीचर आज तक किसी को नहीं मिला। आई नो हिम पर्सनली एट 91 ईयर्स एंड ही हिमसेल्फ वाज सरप्राइज्ड कि मुझे तो आती नहीं थी फ्रेंच, माँ ने कह दिया टीच फ्रेंच। उन्होंने अच्छा, माँ ने कहा अंत में, पहले उन्होंने एक बार बता दिया मुझे फ्रेंच आती नहीं 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 तुम फ्रेंच पढ़ाओगे, उदार पिंटो। माँ ने उनको काम दिया कि ये बनाना है हार्पागॉन, ये सब जो आश्रम खुद ही मैन्युफैक्चर करेगा। तो उन्होंने कहा माँ पैसे तो है नहीं, तो माँ ने एक रुपया निकाला उनके हाथ में रखा और माँ ने कहा स्टार्ट विद दिस। आश्रम में जितने जो फर्नीचर का डिपार्टमेंट, हार्पागॉन में तो और भी कई चीजें, बर्तन वर्तन ये भी बनते हैं, और जितने भी ये सब कई सारे डिपार्टमेंट्स, सॉन्तौर, ये सब उस एक रुपए की करामात है। और उदार के अंदर उस श्रद्धा और संकल्प की मां ने कहा है तो होना है। मेरे अपने एक छोटा सा उदाहरण है, मतलब कई बार लोग कहते हैं अच्छा माँ ने हाथ में, बैंगलोर सेंटर की बात है, इसके तो कई लोग अभी भी उसके विटनेस हैं। तो जब सेंटर को देखने का कार्यभार सौंपा गया तो हमारे पास -5,000 रुपीज़ थे। अब बोलेंगे माइनस कैसे थे, बैंक में 7,000 थे लेकिन 12,000 हमको देने थे चुकाने थे, दो गायें थी, और कैसे करेंगे क्या करेंगे। और हृदय में संकल्प आ गया, ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 91 की, संकल्प क्या आया कि 93 में द्योमन भाई ने एक जगह लिखा है रिलिक्स इंस्टॉलेशन डेट, 6 फरवरी 1993, अब द्योमन भाई तो 91 में चले गए। अब ये कि भाई ये उन्होंने लिखा है और यहां रिलिक्स आने कुछ भी, वो नेपाल महाराजा का पैलेस है, आप सोचिए कितने पैसे वहां दिखा होगा किसी ने, करना है तो आप कैसे करना है, पैसे नहीं है तो एक निकाली एक छोटी सी किताब, ब्लाइंडली चले गए एक मॉल में वहां चंदा मांगने, कुछ नहीं, कोई ये नहीं कि भाई आप देखिए ये पुण्यकार, कुछ भी नहीं, जाके ब्लाइंडली हम श्री अरविंद के दिव्य ध्यान लाना चाहते हैं कुछ नहीं एक्सप्लेन किया। तो पहला जो मिला था वो टावर का भी नंबर था, नंबर एक, और वहां पहली दुकान में 1111, हमने इसको शुभ संकेत लिया। 6 महीने हमने प्रयास किया ऐसी हजार चिल्लर करने का। अचानक एक दिन एक व्यक्ति आता है, कार रोकता है, उतरता है, सूट वूट पहने, कहते हैं ये आप लोग कुछ कर रहे हैं? हाँ, वो एक स्टूडेंट था, यू ऑल नो परहैप्स, ओके, चंद्रनाथ भाई, आई कैन मेंशन एक्चुअली। हाँ, तो उसने कहा कि चलो मिलके, एंड ही वाज ए इनटू बिजनेस। तो वहां से एक बिग चंक आया, इधर से पागलों की तरह हम लोग दिन रात इसी बस धुन में कि रेलिक्स आने हैं, दिन रात बाहर जाना, हर समय नींद में सपने, खाना पीना सब भूल गए, बाजार से खा लेंगे, कहीं से खा लेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, रेलिक्स आने हैं। सारा सब कुछ इतना सुंदर हुआ, इतना भव्य इटालियन मार्बल से श्री अरविंद की वो दिव्य देहांश का समाधि स्थल बना, पूरा वाइट वॉश, मतलब अभी तक उस वो जगह गार्डन बना, गेस्ट हाउस बना, स्कूल बना, ऑल विद इन ए स्पैन ऑफ 2 ईयर्स। वो गाय ने दूध देना ज्यादा शुरू कर दिया। तो मैं आपको ये इसलिए, क्योंकि वो एक डायरी रखनी शुरू की मैंने एज द सेक्रेटरी की, माँ आज इतना दूध दिया है, हमारे पास 2 जर्सी गाय हैं, इसने इतना दूध दिया, यहां से इतने पैसे आए, ये सारा हिसाब किताब माता जी को। तो ये श्रद्धा और संकल्प की शक्ति हम नहीं जानते, हमारे अंदर उसी तरह भावनाओं की शक्ति बड़ी प्रचंड होती है। तो भावों की शक्ति, हम इसको तपस नहीं जानते इनका करना, हम इसको संग्रहित करना नहीं जानते, बिखरी होती है। तो ये फेथ, आइडिया, इमोशंस भी एक पावर है, इवन पैशंस, माने एक जगह लिखा ना पैशनेट लव फॉर द डिवाइन, वो जो अपना रोज है ना ऑरेंज कलर का ऐसे, तो ये शक्ति का तपस। आगे श्री अरविंद बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं, वी सी देन व्हाट फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड योगा इज नथिंग बट प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, इज द कंसेप्शन ऑफ नेचर फ्रॉम विच वी स्टार्ट। तो अब वहां पे श्री अरविंद आगे बताते हैं कि हमारे अंदर 2 प्रकृति हैं, ये भी गीता से है और ये इंपॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि हम सोचते हैं इट्स माई नेचर, आई एम बाउंड बाई इट, यही तो हो गया ना आपकी श्रद्धा क्या है, कि मैं अपनी प्रकृति से बंधा हूं, बंधे रहोगे पूरे जीवन, बंधे रहेंगे अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये बंधन ही सत्य है, तो वी विल कंटिन्यू रिमेनिंग बाउंड फॉर वॉट एवर, आई वोंट यूज द वर्ड इटर्निटी। तो यहां पर वो कहते हैं कि माता जी बताती हैं कि 2 प्रकार की प्रकृति होती हैं, श्री अरविंद बता रहे हैं कि एक लोअर और एक हायर। तो बट द नॉर्मल एक्शन ऑफ नेचर इन अस इज एन इंटीग्रल मूवमेंट इन विच द फुल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल अवर एलिमेंट्स इज अफेक्टेड बाई एंड अफेक्ट्स ऑल अवर एनवायरमेंट्स, द होल ऑफ लाइफ इज द योगा ऑफ नेचर। क्योंकि आप ऐसे कट नहीं कर सकते कि मैं मेडिटेशन करूंगा तो भगवान को याद करूंगा, उसके बाद तो मैं मौज मस्ती कर रहा हूँ, मैं जब बैठ के दिया बत्ती कर रहा हूँ तो मैंने जय गोविंदा गोपाला जय गोविंदा गोपाला, बाहर में पूरा भैया रोकड़ा का क्या हाल है, शेयर मार्केट का क्या हाल है, इट डजेंट वर्क लाइक दैट, होल लाइफ इज ए योगा, बिकॉज नेचर कभी ऐसे। और ये सिंपल चीज है, क्या हमारे थॉट्स हमारे इमोशन से इफेक्ट नहीं होते हैं? क्या हमारी भावनाएं हमारे थॉट से इफेक्ट नहीं होती हैं? और हमारे कर्म क्या हमारे विचार और भावनाओं से इफेक्ट नहीं होते हैं? इट्स ऑलवेज इंटरट्वाइंड। तो ये अलग अलग करना, the yoga that we seek must also be an integral action of nature, and the whole difference between the yogin and the natural man will be this। अंतर क्या है एक योगी में और, क्योंकि सभी दोनों के अंदर नेचर काम कर रही है, यही अंतर है बता रहे हैं। that the yogin seeks to substitute in himself for the integral action of the lower nature working in and by ego and division, the integral action of the higher nature working in and by God in unity. Very simple. हर चीज में देखना ये मैं अपने ईगो और डिजायर के लिए कर रहा हूं या मैं डिवाइन मदर के लिए कर रहा हूं, और वहां सिंसेरिटी की जरूरत है, हम उनको धोखा नहीं दे सकते. तो वो जो अगर हमारे अंदर सिंसेरिटी है कि द सेम थिंग, कुछ और बाहर से कुछ चेंज नहीं है. वो बाद में वो भी बताते हैं यज्ञवल की कहानी, जब वो जा रहे हैं, एक समय आता है जब वो जाना चाहते हैं, तो मैत्रेय और कात्यायनी उनकी जो वाइफ्स हैं दोनों को कहते हैं कि मैंने अपना जो धन है संपत्ति है आधा आधा बराबर बांट दिया है. तो कात्यायनी पूछते हैं डू यू हैव ए प्रॉब्लम. थैंक गॉड उस समय लॉयर वॉयर नहीं होते थे, कोर्ट नहीं होता था. तो कात्यायनी कहती है आई एम फाइन. मैत्रेय कहती है आई एम नॉट ओके. क्यों कहते ये तो तुमको, लेकिन मैंने देखा है तुम्हारे अंदर ये जो ज्ञान का स्रोत है ये सब ये कहां से आता है, ये तुम्हारे अंदर क्या है कि तुम इस इतने सहजता से चले जा रहे हो, मुझे वो सीखना है. तो कहते हैं ओके आई एम वेरी हैप्पी, तुम पूछो क्या पूछना चाहती हो. तो वो पूछते हैं कि व्हाई डज ए मैन लव हिज वाइफ, व्हाई डज ए वाइफ लव हर हस्बैंड, व्हाई डज दे लव द चाइल्ड, व्हाई डू दे लव द कंट्री. अब प्रश्न बड़ा देखिए अद्भुत है, और उत्तर देते हैं, इसको भी सिंथेसिस ऑफ योग में शेरविंद बताते हैं. कहते हैं वन डज नॉट लव द वाइफ फॉर द सेक ऑफ द वाइफ बट फॉर द सेक ऑफ द सेल्फ. आगे बताते हैं एज इज द सेल्फ सो इज द लव. इफ यू आर लिविंग इन द ईगो सेल्फ तो हम ईगो के लिए प्यार करेंगे. अब वो ईगो का प्यार क्या होता है, जब तक या तो मिल रहा है या आप मान लीजिए कोई भी बाहरी कारणों से प्यार कर रहे हैं, तो जब तक वो है तो रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा. और दूसरा है ग्रेटर सेल्फ विद ए कैपिटल एस, डिवाइन के लिए हम प्यार कर रहे हैं. डिवाइन के लिए आप संसार को कैसे प्यार करोगे, अब हम अपने को इनका पजेसर नहीं समझ रहे हैं, हम एक ट्रस्टी के रूप में हैं, और जो भी हमारे जीवन में हैं जुड़े हैं उन सबको हम ऐसे ही ध्यान रखेंगे कि ये भगवान ने इनको हमारे जीवन में जोड़ा है. अब देखिए कितना जीवन बदलता चला जाएगा. दे आर गिवन टू अस बाय द डिवाइन एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम. एज इसलिए नहीं कि इनसे मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये उत्तर है और ये प्रोसेस है. पूरे प्रारंभ होता है यज्ञ का जो चैप्टर है इस संवाद से, छांदोग्य उपनिषद का ये अद्भुत संवाद है. इफ इंडीड अवर एम बी ओनली एन एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड टू गॉड, synthesis is unnecessary and a waste of time. For then our sole practical aim must be to find out one path. तो अगर हमको escape करना है कि हम जीवन से नहीं जुड़ना चाहते हैं, कटना चाहते हैं, तो आप इतना synthesis integral की क्या आवश्यकता है, कोई भी पथ चुन लीजिए, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, कुंडलिनी योग, हठ योग, राज योग, बहुत सारे योग हैं और बड़े नए नए भी आ गए हैं. हॉट योग अमेरिका में होता है, पैसे लेकर के आपको हाइपर स्टीम के अंदर डाल देते हैं, खूब पसीना आता है, तो कहते कैसा लगा, कहते नेचुरली, कहते बहुत अच्छा लगा, देखा यही है शांति. अब हैं लोग तो ये, तो फिर आप कोई सा पथ चुन लीजिए ना, फिर इंटीग्रल योग की क्या जरूरत है. तो इंटीग्रल योग तो एस्केप के लिए नहीं है. Then one should pick up one shortest possible of shortcuts and not to linger exploring different paths that end in the same goal. But if our aim be transformation of our integral being into the terms of God existence, it is then that a synthesis becomes necessary. The method we have to pursue, ab wahan pe ye kehte hain ki sara ye jo apparatus hai hamara jisko ego se juda hua, उस सबको हमको बियॉन्ड ईगो, अब यहां पर माँ आई नहीं है ना सीन पर, तो बियॉन्ड ईगो की बात करते हैं श्री अरविंदो, कि हमको क्या करना पड़ेगा. इन साइकोलॉजिकल फैक्ट दिस मेथड ट्रांसलेट्स इटसेल्फ इनटू द प्रोग्रेसिव सरेंडर ऑफ द ईगो विद इट्स होल फील्ड एंड ऑल इट्स एपरेटस टू द बियॉन्ड ईगो विद इट्स वास्ट, एवरी वर्ड यू सी वास्ट एंड इनकैलकुलेबल बट ऑलवेज इनएविटेबल वर्किंग्स. मतलब क्या है, कई बार लोग कहते हैं आप तो यहां भी डॉक्टरी कर रहे हो आश्रम में आके, बाहर भी कर रहे थे, अंतर क्या है? अंतर है पैसा कमाने के लिए कर रहे थे, मतलब और हमको उसी प्रकार से हम बंधे हुए थे संसार के जो नियम होते हैं। आप, मैं फौज में हूं तो फौज के अपने नियम है, उसके हिसाब से बना रहूंगा। अब यहां पर जो है ये मैं जो बात हुई, दो चीजें वेल्थ और एम्बिशन, ये दो जो द्वार होते हैं इसके लिए मैं कर ही नहीं सकता, मतलब करना चाहूं भी तो नहीं कर सकता। माने वो काट दिया, कोई पैसे तुमको नहीं मिलने, तुम एक देखो, दस देखो, सौ देखो, ना तुम्हारी कोई प्रमोशन होनी है, तो लोग कहेंगे फिर आपका देखभाल, वो माने जिम्मेदारी ले ली तो वही देखभाल होगी। अब क्या हुआ, कर्म तो वही कर रहे हो लेकिन यू हैव टू नाउ सरेंडर। किसके लिए आप कर रहे हो? डिवाइन मदर के लिए कर रहे हो। अगर आप कॉन्शियसली नहीं भी सोच रहे हो तो भी वो ऑटोमेटिक वो प्रोसेस में आ गया। व्हाई? बिकॉज जितने भी कर्म है वहां पे माने का है, ऑल द वर्क, शुरबिंदो का लेटर है, सॉरी, दैट ऑल द वर्क्स डन इन द आश्रम आर द मदर्स वर्क। तो खत्म हो गई ये बात, तो फिर आप नेचुरली, और जैसा मैंने कहा कि इट अप्लाइज टू द सेंटर्स, इट अप्लाइज टू अदर प्लेसेस ऑल्सो। सर्टेनली दिस इज नो शॉर्टकट और इजी साधना, इट रिक्वायर्स ए कॉलोसल फेथ एंड एब्सोल्यूट करेज एंड अबव ऑल एन अनफ्लिंचिंग पेशेंस। करेज चाहिए क्योंकि एकदम अननोन के, हमको चाहिए एकदम स्टैंडर्डाइज तरीका, आप ये करोगे ये प्राप्त होगा। यहां तो आपको ये भूलना ही पड़ता है कि प्राप्त खुद को ही भूलना पड़ता है। प्राप्त तो तब होगा ना जब आप स्वयं को याद रखोगे, मुझे यह प्राप्त होगा जब मैं नहीं तो प्राप्ति क्या। और ये तो व्यक्तिगत उसके लिए की नहीं जा रही है साधना, ये तो पूरे सृष्टि के कल्याण के लिए। और वो कहते हैं कि इसमें तीन स्टेजेस होती हैं। पहला जो हम भगवान के कांटेक्ट में आने की चेष्टा करती है ईगो, और उसके लिए एक लंबा प्रिपरेशन होता है। और दूसरा पूरा एक प्रोसेस जिसमें लोअर नेचर के का धीरे धीरे डिवाइन वर्किंग से सब्स्टिट्यूट होता है, और जो लास्ट है ट्रांसफॉर्मेशन की। तो उसमें लास्ट स्टेज स्विफ्ट होती है, क्विक होती है। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं, In fact, however, the divine strength, often unobserved and behind the veil, substitutes itself for our weakness and supports us through all our failings of faith, courage and patience. भगवान इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, नहीं होता faith, courage नहीं आती, तो आप देखेंगे कि कोई भीतर से कितना भी fifth columnist हो, उसके पीछे कोई और है जो कहता है, वो क्या है, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, बड़े चलो रुको ना सूर साहसी। सो ये कोई चीज है जो आपको ले जाती है स्ट्रेंथ, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि वे चीजें जो आपकी इतनी बड़ी बड़ी वीकनेस थी वो कैसे अपने आप वो बंधन करते चले जाते हैं। पर वन हैज टू हैव द पेशेंस एंड द फेथ। और तब क्या होता है, इट मेक्स द ब्लाइंड टू सी एंड द लेम टू स्ट्राइड ओवर द हिल्स। धीरे धीरे वो सब सब कुछ जो हम मास्टर के प्रति, डिवाइन एज द फ्रेंड। अब यहां पर जो इंटरेस्टिंग चीज और एक बता रहे, देर आर थ्री आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ दिस एक्शन ऑफ द हायर व्हेन इट वर्क्स इंटीग्रली इन द लोअर नेचर। इन द फर्स्ट प्लेस इट डज नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू ए फिक्स्ड सिस्टम एंड सक्सेशन एज इन द स्पेशलाइज्ड मेथड्स ऑफ योगा। स्टेप वन ये, स्टेप टू ये, स्टेप थ्री, आप भगवान को रोकेंगे ऐसे कि नहीं नहीं अभी तो देखिए मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, आप इस समय आ सकते हैं, अलाउड है, अभी तो मैं दोस्तों के साथ बात कर रहा हूं, अभी मुझे फ्रीडम दे दो जैसे भी मैं रहूं। एक कई बार मैं इसको एक स्टोरी के रूप में भी कि भगवान को हम लोग क्या करते हैं, एक एक घर में एक कोने में प्रायः एक कबर्ड में भगवान को रखते हैं, सुबह स्नान वान करके दिया अगरबत्ती जला के फिर कई बार तो कबर्ड बंद भी कर देते लोग, पता नहीं क्यों, उनको शायद डर लगता है लोगों को, ये सेकुलर देश है ना आजकल, तो घर में पोटोल टांगने में लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हालांकि आजकल कूल चीज हो गई है टू हैव अ साइकेट्रिस्ट एंड अ स्पिरिचुअल गुरु, हैज बिकम द इन थिंग। बड़े गर्व से लोग कहते ही इज माई साइकेट्रिस्ट ये कोई गर्व की बात है, हो गई है, ओ ये हमारे गुरु जी हैं। लेकिन थोड़ा सा कई बार लोग पूछते हैं, और ये एक वेव है वोक की। मेरे घर में एक बार कुछ लोग पढ़ने आए, बच्चे, वोक की वेव देखिए कितनी स्ट्रांग होती है। मेरे से पूछते हैं, सर आपने घर में माँ श्री अरविंद की फोटो क्यों लगा रखी है सब जगह? तो मैंने कहा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? आज तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं 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 सर, वो बोलने लगे वो कि हमको इम्पर्सनल वर्ड नहीं, वो जानते हैं कि हमको हर चीज़, वो जो आजकल क्या है ना कि हर चीज़ को समान रूप से। मैंने कहा अच्छा, अब आज हमारा विषय समान रूप से देखने पर ही रहेगा। तो कई बार प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हेल्प करते हैं कि समान रूप से सबको देखेंगे। अब ऐसा है, बाहर जाओ, सुना है मैंने कि बगीचे में एक सांप है। आगे उनको समझ आ गया क्या बोलने वाला है। मैंने कहा ऐसा करना, उस सांप के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा तुम हमारे साथ कर रहे हो, और उससे भी पूछ लेना कि भाई तुम यहां क्यों बैठे हो इस पेड़ के नीचे, पास जाके पूछना, सुनता नहीं है वो। करो समान रूप से, मतलब दे डोंट, दिस इज कॉल्ड फुलिशनेस। समानता एसेंस में है चीजों की, मैनिफेस्टेशन में तो विविधता है। और अगर इस विविधता को हम नहीं समझेंगे तो हम संसार में बहुत हो ही रहा है वो, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द मैनिफेस्टेशन। तो सब में समानता है। हाँ सही, और एग्जाम्पल भी ऐसे ऐसे हमारे यहाँ दिए गए हैं। एक आपको बताता हूँ वेदांत का एग्जाम्पल, हर जगह आप सुनेंगे जब लोग बताते हैं ना डिवाइन एंड प्रकृति संसार को, तो क्या एग्जाम्पल देते हैं? सोना एक ही है, उसके आप भिन्न भिन्न कोई आभूषण बनाते हो, कोई चीज कुछ और बनाते हो, कुछ सोने की चम्मच से चंदू के चाचा ने चांदी की, तो ये सब भी आप बनाते हो भिन्न भिन्न। तो कहते हैं लेकिन स्वर्ण तो एक ही है, मिट्टी तो एक ही है जिससे भिन्न भिन्न पात्र बनाते हो। तो मैंने एक बार पूछा, हाँ लेकिन पात्र तो भिन्न हैं। आप जा करके जब स्वर्ण का आभूषण लोगे और तो आप ये सब नहीं देखोगे कि इसकी कारीगरी कैसी हुई है, इसकी नकाशी, इसकी उपयोगिता क्या है। मतलब आपने मैनिफेस्टेशन को निगेट कर दिया। तो वो ठीक है, अगर आपको मैनिफेस्टेशन को निगेट करना है देन ये स्वर्ण वाला एग्जाम्पल करेक्ट है। लेकिन स्वर्ण तो इसमें भी है और स्वर्ण उसमें भी है। तो उनको ईश उपनिषद की वाक्य समझ आता है, आत्मे वा भूत भी जानता। आपने ये वाले स्वर्ण को कट ऑफ क्यों कर दिया? स्वर्ण ही तो बनाया ना, ये डिवाइन ही तो बनाया ना मैनिफेस्टेशन, कुछ तो मतलब होगा ना। तो यहां पर मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है, इसलिए वो बता रहे। ये एग्जाम्पल आप देखेंगे कई बार, एक सोने का एक वो मिट्टी के पात्र का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। तो भाई मिट्टी और मिट्टी के पात्र, तो मिट्टी का पात्र इजंट इट समथिंग जो मिट्टी के लिए भी अद्भुत बात है, मिट्टी के अंदर जो संभावना है प्रकट हुई। हाउ कैन यू डिनाई दिस ट्रूथ? तो मैनिफेस्टेशन में ये चीजें मैटर करती हैं। अब वहां पे बताते हैं कि विद ए सॉर्ट ऑफ फ्री स्कैटर्ड एंड येट ग्रेजुअली इंटेंसिव एंड पर्पजफुल वर्किंग डिटरमाइंड बाय द टेम्परामेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन होम इट ऑपरेट। तो पहले लगे कि कहीं अचानक एक अंदर भाव आ गया माँ, फिर कभी और अचानक रैंडमली, भगवान ऐसे करते ना पहले रैंडम मोमेंट्स पे मोस्ट अनसस्पेक्टिंग तरह से वो आते हैं, टच करते हैं, कैसे कहाँ कोई भी उपाय वो ढूंढ सकते हैं, और धीरे धीरे वो इंटेंस होने लगती है, पर्पसफुल होने लगती है, एस्पिरेशन और बढ़ने लगती है। तो ये उनका तरीका है। दूसरा, सेकेंडली द प्रोसेस बीइंग इंटीग्रल accepts our nature such as it stands organized by our past evolution and without rejecting anything essential compels all to undergo a divine change. तो पहले तो हर एक का temperament अलग है, temperament के अनुसार वहां से प्रारंभ होगा। कोई emotional है तो उसके अंदर भक्ति का प्रारंभ होगा, कोई बहुत intellectual है वहां पर उसके thought को touch किया जा रहा है, कोई कर्मठ है उसके works को touch कर रहे हैं, लेकिन अंत में हर चीज को योग शक्ति टच करेगी और चेंज करेगी। और यहां पर वो कह रहे हैं कि एसेंशियल, हमारी प्रकृति में दो चीजें हैं लोअर नेचर में भी, एक जो एसेंशियल है और दूसरा है जो उसके ऊपर लिपअप होती है, ये स्वभाव और स्वधर्म और उसके ऊपर जो विकृतियां हैं, इसकी बात गीता में की, लोअर नेचर की बात हो रही है। एसेंशियल क्या है? भावना। एसेंशियल है, हर व्यक्ति के अंदर भाव है। उसके अंदर जो डिस्टॉर्शन क्या है? हेट्रेड, घृणा, द्वेष, राग से द्वेष उत्पन्न होता है, अटैचमेंट, ये उसके डिस्टॉर्शंस हैं। तो जो शुद्ध भाव है वो कभी मनुष्य प्रकट नहीं कर पाता, क्योंकि इनवेरेबली वो जैसे ही उतरते हैं ईगो के क्षेत्र में वो डिस्टॉर्शन हो जाते हैं। आई थिंक किसी ने ट्रिपल सोल फोर्सेस की बात आज व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाली है, तो उसमें हम देखते हैं जो एक प्रकृति के अंदर जो मूल सत्य है एसेंशियल, और दूसरा जो उसका डिस्टॉर्शंस है, डिस्टॉर्शंस हमको हटाने हैं और जो उसका मूल सत्य है उसको पकड़ के रखना है ताकि वो और पावरफुल बने और पोटेंशिएट बने। वी बिगिन टू अंडरस्टैंड what the Vedic rishis meant when they spoke of the human forefathers fashioning the gods as a smith forges the crude material in his smithy. So hum sab crude material hai, relative degree hai, aur usko leke bhagwan apne haathon se fir gadna shuru karte hain, aur ye aashchar hota hai, param aashchary. I'm sure everybody has this experience, kaise kuch cheeze jo humko badi natural lagti thi wo chhut gayi और हम सोचते हैं कि सच में हम ऐसे मूर्ख थे, ये नहीं कि अभी कम मूर्ख हो गए लेकिन थे। अब मैं तो यही कहता हूं, थे तो थे, थोड़े कम हुए पर मूर्ख तो महामूर्ख थे। और जैसे जैसे हम देखना शुरू करते हैं तो लगता है ये कैसे हुआ, ये मेरे अंदर कैसे ये भाव आया। वे चीजें जो मुझे बड़ी आकर्षित करती थी, पार्टी में जाना, इसमें जाना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जनरल एक बात कर रहा हूं, कैसे एकदम अब नहीं मन कर, है ना, ये कई लोगों का एक्सपीरियंस होगा। आई थिंक मेनी यंगस्टर्स आल्सो हैव दिस एक्सपीरियंस। ये चेंज कहां से आता है? आई नो देम, सो आई नो दैट दे हैव दिस एक्सपीरियंस, सो इट इज सो अमेजिंग कि ये चेंज आने। थर्डली, द डिवाइन पावर इन अस यूजेस ऑल लाइफ एज ए मींस ऑफ दिस इंटीग्रल योगा। एवरी एक्सपीरियंस एंड आउटर कॉन्टेक्ट विद अवर वर्ल्ड एनवायरमेंट, however trifling or however disastrous is used for the work, and every inner experience, even to the most repellent suffering or the most humiliating fall, becomes a step on the path to perfection. ab dekhiye iska to mujhe ek humorous example yaad aa raha tha, kar do. ab kal hum logo ne dekha na, kal kya tha, impossible hai, fir kahin na kahin ek sankalp karenge, chalo श्योर आइडिया और फेथ का टेस्ट हो गया। श्योर आइडिया और फेथ है, ये नहीं कि आपको जबरदस्ती करना है कुछ दिखाने के लिए, नहीं आज तो अब करेंगे, फेथ और आइडिया, एंड यू गो, यू धीरे धीरे यू कम विद दैट। पर एक जो मुझे ये मोस्ट ह्यूमिलेटिंग फॉल का जो याद है, डाइनिंग रूम में बहुत बारिश हो रही थी, अब तो उन्होंने थोड़े वो कवर ओवर लगा दिए, पहले स्टेप्स पे नीचे से ऊपर अगर आप जाओ तो कवर नहीं था, तो फिसलन थी, और मैं वो खटारा चप्पल लेकर के घूमता था, तो फिसल गया रबर की चप्पल और धड़ाम से मैं गिरा, और गिरा कैसे, ऐसे बैठ गया, वो स्टेयर है ना वैसे, तो कोई डाइनिंग रूम में जो देती हैं खाना वाना वो उधर सामने थी, वो देखा उन्होंने, तो देख करके बोली, ओ डॉक्टर हैज फॉलन। मैंने चुप रहा, फिर उठने की चेष्टा की, फिर गिरा। अब उसने कहा, ओ ग्रेट मैन हैज फॉलन। अब उसमें थोड़ा व्यंग था तो मैंने भी फिर उस समय माने जो कहलवाना था, मैंने कहा ग्रेटनेस इज नॉट इन नेवर फॉलिंग, ग्रेटनेस इज इन गेटिंग अप एवरी टाइम यू फॉल। मैं खड़ा हो गया मैंने कहा भाई जो नहीं गिरा वो तो कभी लड़ा ही नहीं। हम लोग तो हिंदी में वो सुनते रहे ना, गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, बुजदिल वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले जो आप लड़ाई लड़ोगे तभी तो गिरोगे, जो गिरा ही नहीं तो उसका मतलब, तो शेरविंद एक एफोरिज्म में कहते हैं, ऐसे व्यक्ति के नीचे कभी मत लड़ो जो कभी जीवन में हारा ना हो। तो ये जब पार्टीज का वो चल रहा था ना, ये अब पॉलिटिक्स में आई डोंट वांट टू गो, बट एक और आपके वंश से आ रहा है कि भाई नहीं, लेकिन कभी उसने सामना नहीं किया है ओपन हार का, ओपन चैलेंजेस का, और दूसरा जो हार के गिर के दब के कुचल के ऊपर उठता है, ऑलवेज फाइट अंडर दैट पर्सन्स बैनर, क्योंकि ये इसको ठीक मालूम है जहाज को कैसे ले जाना है। जो कभी हारा ही नहीं वो तो पहली चोट पहुंचेगी और परेशान हो जाएगा। तो ये एवरी ह्यूमिलेटिंग फॉल, उसमें भी आप सीखोगे कुछ, क्योंकि अब वो डिवाइन आपको सिखाते चले जा रहे हैं। And we recognize in ourselves with open eyes the method of God in the world. His purpose of light in the obscure, of might in the weak and fallen, of delight in what is grievous and miserable. We see the divine method to be the same in the lower and in the higher working. All life is a yoga of nature, seeking to manifest God within oneself. Yoga marks the stage in which this effort becomes capable of self-awareness and therefore of right completion in the individual. So, ye kya effort hai? Usko ek line mein summarize kar rahe hain. It is a gathering up and concentration of the movements dispersed and loosely combined in the lower evolution. Yehi cheez ho rahi hai. Kyunki prakriti ke andar yog chal raha hai. Yehi to Shri Krishna chauthe chapter mein batate hain. Main kar raha hoon. Maine ye yog sabse pehle Vivaswan ko diya. अब अर्जुन कह रहे हैं, सर सॉरी टू से पर मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, JNU वाले छात्र बताते हैं कि विवस्वान जो है वो तो सूर्य का, सूर्य के कई नाम है ना, बारह, उसमें से एक नाम है विवस्वान, जो निकलता है ना सबसे पहले विवस्वान। तो कहते हैं ये सूर्य तो आपसे बहुत पहले नहीं था, आपकी बर्थ डेट तो सुना है, आप किसी अष्टमी के दिन पैदा हुए थे, दूसरा वो तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, हमने ये पढ़ा है, तो आपने ये उनको कैसे ये योग दिया कृपा करके लाइट थ्रो करें। वहीं नहीं रुकते हैं, कहते विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, राम की सोलर डायनेस्टी, फिर वो खो गया, फिर मैंने इसको कालांतर में, आज मैं रिवाइव कर रहा हूं, अब तुझे दे रहा हूं। मैं इस पंक्ति को श्री कृष्ण श्री अरविंद की परमिशन से आगे ले जाता हूं। श्री कृष्ण ने भारत को ये योग दिया, बाद में फिर वो बुद्ध शंकराचार्य इत्यादि इत्यादि में खो गया, तो अब फिर से श्री अरविंद इस योग को हम सबको दे रहे हैं। इट इज द ओरिजिनल योगा। और वो योग सूर्य क्या कर रहे हैं, देखिए सूर्य एक ऐसे हैं जो सतत कार्य कर रहे हैं, उनको आप ब्लेम करिए अरे बहुत गर्मी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनको कहिए कि वाह आज बड़ा अच्छा है, मध्यम मध्यम सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना काम करते जा रहा है। वो सूर्य से ही हम सीख सकते हैं पूरा योग, खुद जल रहा है और दूसरे को प्रकाश दे रहा है, अंदर में ताप भरा है, लेकिन वो कई चीजें नहीं देता, उतना ही देता है जितना संसार को जरूरत है। वो क्रिएटर भी है, सृष्टा भी है, और वो डिस्ट्रॉयर भी है। हम सभी अपने जीवन के, हम क्रिएटिव एस्पेक्ट को ले सकते हैं या हम अपने जीवन को नष्ट कर सकते हैं। तो ये सारा अगर केवल हम किसी भी चीज को, क्योंकि संसार में सब जगह वही चीज चल रही है, देखने वाला देखे तो पत्थर में भी योग चल रहा है। तो जैसे ही हम उस दृष्टि से देखने लगते हैं तो किसी भी चीज से सीख जाएंगे, तो क्योंकि वही चीज है जो संसार में हो रही है। लेकिन जब मनुष्य इसको पर्पसफुल बना लेता है, कंसेंट्रेट करके कि अच्छा ये है ऐसे करना है, तो वो अपने आप चेंज आने लगता है। अब चूंकि हम यहां तक आए तो इस योग के परिणाम, ये भी लोग पूछते हैं क्या मिलेगा सुप्रामेंटल, भाई सुप्रामेंटल से भी ऊपर कोई चीज है नहीं, मतलब सुप्रामेंटल इज डिवाइन क्रिएटर अनवेल, दैट्स ऑल। तो हमें क्या मिलेगा इस योग के परिणाम स्वरूप, ये देखिए कितनी सुंदर है, मेरी तो ये फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट पैसेजेस। देयरफॉर आल्सो एन इंटीग्रल लिबरेशन, क्योंकि हम लोग मुक्ति मुक्ति की बात करते हैं, नॉट ओनली द फ्रीडम बॉर्न ऑफ अनब्रोकन कॉन्टैक्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल बीइंग इन ऑल इट्स पार्ट्स विद द डिवाइन, सायुज्य मुक्ति, आप भगवान के साथ टोटेलिटी में एक हो गए। वो देखने को अब दो हैं लेकिन वो एक हो गए। श्री अरविंद बताते हैं ना, जब श्री कृष्ण के साथ बिकम्स कंप्लीटली वन, बाय विच इट कैन बिकम फ्री इवन इन द सेपरेशन, इवन इन द ड्युअलिटी वन, नॉट ओनली द सालोक्य मुक्ति। अब इसमें दो चीजें, सायुज्य सालोक्य, सालोक्य सायुज्य इज कंप्लीट आइडेंटिटी हो गई, सालोक्य सेम ही तरह से आप निवास, हालांकि सेपरेशन है लेकिन एक ही लोक में निवास कर रहे हैं, वो जॉय के लिए है, मैनिफेस्टेशन के आनंद के लिए है, सालोक्य मुक्ति, बाय विच द होल कॉन्शियस एग्जिस्टेंस ड्वेल्स इन द सेम स्टेटस ऑफ बीइंग एज द डिवाइन, सालोक्य। in the state of Sachidanand, but also the acquisition of the divine nature by the transformation of the lower being into the human image of the divine Sadharma Mukti, and the complete and final release of all, the liberation of consciousness from the transitory mold. So, Sadharma Mukti kya ho gaya? Sadharma Mukti ho gayi ki jaise divine संसार को देखते हैं और करते हैं, कर्म करते हैं, वैसे ही वो व्यक्ति संसार को देखने लगता है और वैसे कर्म होने लगते हैं. कोई अंतर नहीं होता है. अब डिवाइन में सब हैं, महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती. हमारी जो इमेज, इसीलिए इंटीग्रल योग में जो चेंज आता है वो सेंटहुड नहीं है. सेंटहुड है कि भाई नहीं, प्रत्येक जीव पर दया करो, कृष्ण जी फेल हो जाएंगे. आपने तो ऐसा क्राइटेरिया, हालांकि वो दया है, बहुत बड़ी दया है कि उन्होंने दुर्योधन और कर्ण को, उनकी सोल को छुटकारा दे दिया इस देह से जो पाप वृत्ति में बुरी तरह, वो दया थी. इट वॉज ए ट्रेमेंडस कॉम्पैशन. कोई अगर श्री कृष्ण से पूछते कि आपने कर्ण को क्यों मरवा दिया बाय द वे इस तरह से, तो क्या कहते? दया आ रही थी उस पर. उसकी आत्मा कितना पीड़ित हो रही थी. वो जानती थी कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन बंदा तो था जड़ बुद्धि, चुन लिया तो चुन लिया, कहने लगा मैंने बहुत प्रयास किया. कृष्ण जी तो ये एक्सप्लेनेशन देते, लोग कितने बड़े बड़े, कृष्ण जी तो ये कहते मैंने बहुत प्रयास किया. उसको ये भी कहा चेंज कर ले, तो बड़ा पांडव है और लोग तो उस पर भी मुझे क्या क्या कहने लगे. ये तो इसने एक वृत्ति पकड़ ली, मैं बहुत ही, मैंने वचन दिया है और मैं मित्र का साथ निभाऊंगा. धर्म से बड़ा तो कुछ नहीं होता है. मैंने उसको कहा अभी भी बच जा, नहीं माना तो मैंने उसको बड़ी दया की. द्रोणाचार्य पे क्या किया आपने? बहुत दया की उस पर, और कर्ण पर भी. वैसे तो उनकी मृत्यु निश्चित थी. इन सब ने द्रौपदी का जो मजाक उड़ाया था, लेकिन मैंने उनको युद्ध में मरवाया. कम से कम वीरगति तो प्राप्त होगी. सांप काट लेता, कुछ भी हो जाता, हार्ट अटैक हो जाता, मैंने इनको युद्ध में, चलो कम से कम तुम्हें. और भीष्म का तो और क्या किया जाता उनके साथ, मतलब अपने हट के पीछे उन्होंने सब त्याग दिया, धर्म भी त्याग दिया. त्याग की पराकाष्ठा इतनी अधिक हो गई. तो अगर आप भगवान की दृष्टि से, तो वो सोल कितना तड़प रही थी, और उसको उन्होंने इस देह से, कई बार हम भगवान की इस खेल को नहीं देख पाते, तो हमको लगता है भाई ये गुड मैन, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, क्योंकि हम ह्यूमन लॉजिक की सीमा से. पर भगवान तो ये नहीं है. दया का अर्थ वो एक कहानी देते ना कि वो कहता है कि मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ू, वो भी एक स्टोरी है, अभी इंडो पाक वार में बड़ी लागू होती है. कुछ लोगों का ये भी मानना है, कहते हैं एक साधु जी, वो साधु सन्यासी संत जो भी, वो पानी में नहा रहे थे, तो उनको एक बिच्छू ने, वो बिच्छू डूब रहा था, उन्होंने उसको बचाने की चेष्टा की, तो उसने उसको उनको डंक मारा, तो डंक मारा तो हाथ से गिर गया. उन्होंने फिर बिच्छू को उठाया बचाने को, बिच्छू ने फिर डंक मारा, फिर गिर गया. तीन बार ऐसा हुआ, तो किसी ने कहा आप ये क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा देखो वो बिच्छू है, अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं. मुझे तो ये बड़ी मूर्खतापूर्ण कहानी लगी. मतलब आप अपने स्वभाव को पकड़ के बैठे हैं, ये बिच्छू को आप बचा करके लाने वाले हैं जो ना जाने कितने और लोगों को मारने वाला है काट करके. और कुछ मत कीजिए, उसको जाने दीजिए अपनी गति में. ये आउट ऑफ द वे जाके बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अब समझ आए? $100 million एड, वो तो खैर अलग कहानी है. पता है? नहीं पता है ना? पता है लेटेस्ट हिपोक्रेसी इंटरनेशनल रिलेशंस की जो अब प्रकट हो रही है. कल की तारीख में वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने पाकिस्तान को $100 million की एड दी है. $1 billion. हाँ, अब लेकिन आप बोलेंगे कि भगवान ने ऐसा क्यों होने दिया? इसी जोश में मदोन्मत होके उन्होंने अंधाधुंध शुरू कर दिया. मतलब चुप बैठे रहते, उछल पड़े तो अब परिणाम होंगे. भगवान का तरीका देखिए, क्यों असुर बुद्धि को भी उपयोग में लाते हैं. यही तो श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के वार का यही तो है. वो बर्बरिक था ना, वो दो बाण में सबको, सारे कौरवों को नष्ट कर सकता था. तो जैसे ही आता है श्री कृष्ण तो उसका गला ही काट देते हैं। तो कहते हैं कि ये आपने क्यों कर दिया है, तो हमारा सारा युद्ध ही नहीं होता, बिना युद्ध के सब काम हो जाता। तो क्या कहते हैं, कहते हैं नहीं नहीं इधर भी हैं कुछ लोग उनका भी मुझे ये सारे युद्ध तो समाप्त हो जाता, उसके बाद जो ये द्रुपद और सारे एक से एक ईगो बैठी हैं इनका भी तो मुझे विनाश करना है। तो ये देखिए भगवान की लीला जैसे हम समझते हैं, इट इज नॉट वन साइडेड वर्सेस अनदर साइड, द टू साइड्स आर द डिवाइन एंड द अनडिवाइन। सो दैट इज हाउ वी हैव टू से, ऑफ कोर्स इन ए बैटल कॉन्टेक्स्ट द डिवाइन मैनिफेस्टेशन विल टेक प्लेस मोर थ्रू द विक्ट्री ऑफ वन साइड। इसीलिए माँ कहती हैं कि इंडिया विक्ट्री इज नीडेड फॉर द गुड ऑफ द वर्ल्ड। केवल ये नहीं कि हम इमोशनल सेंटिमेंटल हो जाएं कि भाई हमारा देश है, वो तो ठीक है, वो एक अलग बात है, वो लोअर रिएक्शन है, लेकिन जो करेक्ट वो है कि इंडिया इज नीडेड फॉर द गुड ऑफ द वर्ल्ड। और सच है कि अगर सनातन धर्म नहीं बचता, भारत नहीं बचता, तो ये संसार तो कब एक दूसरे को काट के मर जाएगा, वी कैनॉट इवन इमेजिन। पर वो एक अलग विषय है, पूरी जियो पॉलिटिक्स उसमें आ जाएगी, भारत का जो रोल है वो क्या कर रहा है सनातन धर्म विज़ा-विज़ अदर आइडियोलॉजीज। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तब हम देखते हैं कि भगवान हर चीज में काम कर रहा है, वही पत्थर में बंधा हुआ है, वही लहरों में खेल रहा है, वही वृक्षों में पत्ते बन के फूट रहा है, पुष्पों में खिल रहा है। लेट्स क्लोज विद दैट पोयम, इन द ब्लू ऑफ द स्काई इन द ग्रीन ऑफ द फॉरेस्ट, क्लोज मीन्स इसके बाद हम लोग क्वेश्चन ले लेंगे थोड़े से, इन द ब्लू ऑफ द स्काई इन द ग्रीन ऑफ द फॉरेस्ट, हूज इज द हैंड दैट हैज पेंटेड द ग्लो, व्हेन द विंड्स वेर अस्लीप इन द वॉम्ब ऑफ द ईथर, हु वाज इट रेज देम एंड बेड देम टू ब्लो, ही इज लॉस्ट इन द हार्ट इन द केवन ऑफ नेचर, ही इज फाउंड इन द ब्रेन वेर ही बिल्ड्स अप द थॉट, इन द पैटर्न एंड ब्लूम ऑफ द फ्लावर ही इज वोवन, इन द ल्यूमिनस नेट ऑफ द स्टार्स ही इज कॉट। आगे देखिए, इन द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैन इन द ब्यूटी ऑफ वुमेन, हाउ ही एवरीथिंग यू कैन सी द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन, एंड इन द फैशनिंग ऑफ कर्ल द हैंड दैट सेंट जुपिटर स्पिनिंग थ्रू हेवन स्पेंड्स ऑल इट्स कनिंग टू फैशन ए कर्ल। ये है ना समग्र दर्शन, हम आंख मूंद के ही देख रहे हैं भगवान को, खुली आंख से भी बहुत सारे भगवान दिखते हैं। In the fashioning a curl, but who, these are his works and his veils and his shadows, but who is he then, by what name is he known, is he Brahma or Vishnu, bodied or bodiless, twin or alone, we have love for a boy who is dark and resplendent, a woman is lord of us, naked and fierce. Chalo padhi le jise kuch bhi ho na ho, bahut sundar hai. In the blue of the sky, in the green of the forest, whose is the hand that has painted the glow? When the winds were asleep in the womb of the ether, who was it roused them and bade them to blow? He is lost in the heart, in the cavern of nature. यहाँ छिपे हैं, असल यहाँ है जगह, लेकिन यहाँ तो मनुष्य ढूंढेगा नहीं। तो वो thought में धीरे धीरे भगवान हैं क्या, कैसे हैं, रूपवान है, अरूप है, निर्गुण है, सगुण है, वो थॉट में वेदांत दर्शन कर रहा है। ही इज फाउंड इन द ब्रेन वेर ही बिल्ड्स अप द थॉट, इन द पैटर्न एंड ब्लूम ऑफ द फ्लावर्स ही इज वोवन, इन द ल्यूमिनस नेट ऑफ द स्टार्स ही इज कॉट, इन द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैन इन द ब्यूटी ऑफ वुमेन, इन द लाफ ऑफ ए बॉय in the blush of a girl, the hand that sent Jupiter spinning through heaven spends all its cunning to fashion a girl, these are his works and his veils and his shadows, but where is he then, by what name is he known, is he Brahma or Vishnu, a man or a woman, bodied or bodiless, twin or alone? अब देखिए पंक्तियां, कृष्ण और काली का वर्णन है. वी हैव लव फॉर ए बॉय हु इज डार्क एंड रेस्प्लेंडेंट, सांवरा सलोना. We have love for a boy who is dark and resplendent. A woman is lord of us, naked and fierce. कोई है ऐसा धर्म जिसने इतना साहस किया है नमुंड मालिनी रूप में? इस पर ही जोक आया, कहते तुम कह रहे थे कलमा कलमा पढ़ो, हमने काली माँ पढ़ लिया. बिल्कुल, काली माँ प्रकट हो गई. भाई हमको कलमा आता नहीं, हमें तो काली माँ आती है. काली माँ के नाम से आहुती भी हमने दे दी और काली माँ प्रकट हो गई. अ वुमेन इज लॉर्ड ऑफ अस नेकेड एंड फियर्स. वी हैव सीन हिम ए म्यूज ऑन द स्नो ऑफ द माउंटेन्स. शिव जी भी आ गए. वी हैव वॉच्ड हिम एट वर्क इन द हार्ट ऑफ द स्फीयर्स. आ गए ना विष्णु जी. ये सारे देखिए एस्पेक्ट्स कैसे शेयरविंद, आप देखिए वो क्या कह रहे हैं. अब इतने जो वॉल्यूम लिखे, कई लोग कहते हैं कि किसके लिए लिखे, मनुष्यों के लिए नहीं लिखे. वी विल टेल द होल वर्ल्ड ऑफ हिज वेज एंड हिज कनिंग. मनुष्य पढ़े जाने आनंद है, उनको सब सब कुछ बता दिया भगवान ने, अपनी सारी करतूतें सारी सीक्रेट्स उन्होंने उसको एक्सप्रेस कर दिया. अब हम जानना चाहे नहीं जानना चाहे ये हमारी समस्या है. We will tell the whole world of his ways and his cunning. He has rapture of torture and passion and pain. He delights in our sorrow and drives us to weeping. Then lures with his joy and his beauty again. ये क्या तरीका है कन्हैया? हम रो रहे और आप खुश हो रहे. हाँ, क्योंकि मेरे पास है ना जो तुझे नया पकवान देने वाला हूं. तू तो उस पर रो रहा है कि तेरे हाथ से जो लड्डू चला गया, और तुझे मालूम नहीं राजभोग जो मेरे हाथ में रखा है तो अभी दे दो ना. ना ना, अभी देने से तो फेंक देगा गुस्से में. थोड़ा रो ले, अच्छे से रो ले. जब तू रो लेगा तब मैं देने वाला हूं ये राजभोग. फिर उसको भी फेंक दोगे? हाँ. क्यों? सारी मिठाई फेंक दोगे? हाँ, क्योंकि मधुरम मधुरम तो मैं ही हूं. अंत में तू मुझे खाएगा, मुझे पिएगा, मुझे अपनी इंद्रियों से तू ग्रहण करेगा, मुझ में रहेगा और मैं तुझ में रहूंगा. पर धीरे धीरे मिठाइयों से. मधुरम मधुरम. ही डिलाइट्स इन अवर सॉरो एंड ड्राइव्स अस टू वीपिंग. देन ल्योर्स विद हिज जॉय एंड हिज ब्यूटी अगेन. All music is only the sound of his laughter. एक जगह शिव के अट्टहास को श्री अरविंद कहते हैं कि कालिदास अपने एक पोइटिक इमेज में लिखते हैं कि जो जो कैलाश में जो लेयर्स आपने देखे होंगे ना, जो बने बने हुए हैं, इट इज़ द लाफ्टर ऑफ शिवा जो बर्फ के रूप में वहाँ पे जम गया है. कहते हैं शिव का अट्टहास ऐसा होता है. कहते हैं भगवान की मुस्कान केवल दबी हुई नहीं होती है, उसमें अट्टहास का भी भाव है. एक आश्रम में एक थे राजभाई, अब तो नहीं रहे, वो खूब हंसते थे. उनको हंसने की बीमारी थी बहुत अच्छी. और वो रात को 10 बजे आकर के अचानक, तो बैंगलोर में रहता था, 10 बजे रात को आकर के चलो कहाँ चलना है, चलते हैं. वो पास में ओबेराई था, वहाँ चल के उनको क्या खाना है, कहते हैं कि वो रोस्टेड वो काजू. और बुला करके वो बहुत समझाते थे उसको, शेफ को बुला, वो ऑर्डर नहीं देते थे उसको ना ऐसे बनाना. और उसके बाद भूल गए, ही वॉज नॉट अटैच टू फूड. दे वॉज सो मच जॉय. और वो लाफ्टर में उनके एक्सप्रेस, वो अब आश्रम में भी वो हंसे तो ऐसा हंसे कि भाई सीरियस साधकों को डिस्टर्बेंस हो जाता है. तो किसी ने रविंद्र जी को कहा प्लीज माता जी को बताइए. तो रविंद्र जी गए माता जी के पास, उन्होंने कंप्लेंट कहा, इसकी कंप्लेंट है. राज को बता दिया था कि ये लोगों ने कहा है मैं माता जी के पास तुम्हारी कंप्लेंट करने जा रहा हूँ. तो गए, वापस आए तो राज ने कहा क्या कहा माँ ने? माँ कहती हैं मैंने तो अब तक उसकी हंसी नहीं सुनी, टेल हिम टू लाफ ए लिटिल लाउडर. मैंने तो सुनी नहीं, जब मेरे कानों तक नहीं पहुंची वो हंसी तो कैसी हंसी. अब देखिए कई चीजों की ग्रैंडनेस में भी दिव्य भाव है. जैसे भगवान छोटे से छोटे में रहता है. इसको श्री रामकृष्ण बड़े सुंदर ढंग से एक वो बता दीजिए. ऑल ग्रेट मिस्टिक्स अंडरस्टैंड दिस. ये हम लोगों के अंदर हो गया छोटा 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 शूद्र, ये जो भाव हमारे अंदर आ गया ना. तो श्री रामकृष्ण से पूछा साधकों ने, कुछ आप बताइए सेल्फ के बारे में. कहते देख मैं तुझे दो एग्जाम्पल देता हूँ. उधर से आ रहे थे विवेकानंद, तो कहते हैं कि इससे पूछते हैं विवेकानंद सेल्फ के बारे में कुछ बताओ ब्रह्म के बारे में. ओ अचानक कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूं. अब वो जो उन्होंने कहा तो कहते विवेकानंद ने अपना इतना विस्तार कर लिया कि माया की डोर छोटी पड़ गई, पकड़ नहीं सकती इनको. कहते लेकिन यही एक सत्य नहीं है. वहां बैठे थे नाग महाशय, नाग महाशय से भी पूछा तुम बताओ कुछ सेल्फ के बारे में. तो वो क्या कहते हैं, मैं तो हूं ही नहीं, तुम हो, सब कुछ तुम हो. मैं क्या बताऊं, मैं हूं ही नहीं, क्या बताऊं. तो उनके बारे में कहते हैं ये इतना छोटा कर लिया इसने आपको, अपने आप को, कि माया बांध नहीं सकती. देखिए अब शेरविन तो दोनों का कम है. हम लोग कई बार ना उससे घबराते हैं ग्रैंडियोज मूवमेंट से. वार का एक एस्पेक्ट है ना, उसमें ग्रैंडियोज मूवमेंट है. सुनामी काली का रूप है, रुद्र का भाव है. हमारे यहां तो ये सारी चीजें हैं. रुद्र क्या करते हैं जाके, पूरा दक्ष प्रजापति का सारा वो घर परिवार समेत डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो ये दोनों मूवमेंट्स में है. तो यहां पर शेरविन Our lives, all music is only the sound of his laughter, all beauty, the smile of his passionate bliss. Our lives are his heartbeats, our rapture the bridal of Radha and Krishna, our love is their kiss. अब आप कहां अच्छा बुरा देख रहे हो. सब कुछ का ओरिजिन वहां से, केवल ये कि आपको चेंज कनेक्ट कर देना है, ताकि आप इसको अपना ईगो से नहीं कनेक्ट करें. मैं नहीं, माँ माँ माँ, माँ का गिफ्ट है, माँ का गिफ्ट है, माँ का गिफ्ट है, माँ का है. आपकी इंटरेक्शंस भी बदल जाएंगे. ही स्ट्रेंथ दैट इज लाउड इन द ब्लेयर ऑफ द ट्रम्पेट्स. हो रहा है ना, ये सायरन बज रहे हैं, जेट फ्लाई कर रहे हैं. एक्चुअली इफ यू हैव दैट भाव मूड, you will feel the divine presence even in that. So yahan par he is strength that is loud in the blare of the trumpets, and he rides in the car and he strikes in the spears. He slays without stint and is full of compassion. He wars for the world and its ultimate ears. Yuddh ho raha hai, kyon ho raha hai? नव सृष्टि के लिए युद्ध हो रहा है. अरे ये सब आप लोग खाली नव सृष्टि, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध, हाँ हाँ मालूम है, लेकिन नव सृष्टि के लिए हो रहा है. अंधे को आप प्रकाश नहीं दिखा सकते, वो और बात है. इन द स्वीप ऑफ द वर्ल्ड्स, इन द सर्ज ऑफ द एजेस, इनफेबल माइटी मैजेस्टिक एंड प्योर, बियॉन्ड द लास्ट पिनकल सीज्ड बाय द थिंकर, ही इज थ्रोन्ड इन हिज सीट्स That forever endure. अब देखिए, देखने की दृष्टि बदलती है. महाभारत सारा ये हो रहा है युद्ध. अब धृतराष्ट्र बड़े चिंतित हैं कि हमको तो अब लगता है कि अमेरिका भी सपोर्ट नहीं करेगा. बाहर से काल यवन आया था, इसको तो पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया. कौन सी आर्मी इधर चली, वो इसी कैलकुलेशन में लगे. जैसे दुर्योधन था ना, 18 मेरी सेना है, ये है, इतने वॉरियर्स हैं. तो धृतराष्ट्र कहते हैं तो मूर्ख है. अर्जुन समझदारी की काम कर रहा था, मेरा बेटा तो मूर्ख है, लड़ने जा रहा है. अर्जुन देखो कितनी समझदारी की चीज कर रहा था कि वो फेंक रहा था गांडी. ये सारा कृष्ण का कर रहा है. तो बहुत परेशान है. तो पूछते हैं संजय तुम ही कुछ बोलो ना. कहते हैं मेरा तो एक ही मत है, जहां कृष्ण है जहां अर्जुन है, विजय तो वही है. बाद में वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये सब बिल्कुल वही वर्ड्स हैं जो शेरविंद के बारे में चित्रंजन दास ने इंस्पायर्ड होके कहे, बट विद ए डिफरेंट लैंग्वेज. शेरविंद के बारे में चित्रंजन दास कहते हैं Long after, the man who stands today in the court stands in the court of history. Long after the controversy is hushed and he is dead and gone, his words will echo and re-echo in distant lands. Ye kaun keh sakta tha us samay? वैसे ही संजय कहते हैं कि राजन ये तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, महाभारत तो होगी चली जाएगी, सब अपनी अपनी टीका टिप्पणी करके चले जाएंगे, भूल भी जाएंगे, भीम अर्जुन जैसा कोई था भी कि नहीं था, लोग कहेंगे ये मिथोलॉजी है, उनके ये वेपन्स पाए नहीं जाएंगे, यही बस चलता रहेगा लोगों में। लेकिन एक चीज मुझे पता है कि वो जो डायलॉग हुआ है ना बैटलफील्ड पे, ये कभी समाप्त नहीं होगा। और दूसरा, वह रूप जो मैंने देखा कृष्ण का, विश्व रूप, वह कभी अंकित हो गया है धरती के अंदर, मैन विल अगेन एंड अगेन सीक इट एंड फाइंड इट। तो ये देखिए कि सारी एजेस प्रलय सब में क्या बचता है, भगवान की मैनिफेस्टेशन उत्तरोत्तर इनके मार्ग से होती है, हर नया सतयुग पुराने सतयुग से ऊपर होता है, इट डज नॉट गो बैक टू द सेम सतयुग, इट गोज वन स्टेप हायर। अंतिम आठ पंक्तियां, द मास्टर ऑफ मैन, अब ये भगवान कौन है, द मास्टर ऑफ मैन एंड हिज इनफिनिट लवर, ये क्या, हमने अनकंडीशनल लवर तो सुना है, लव विदाउट ए इनफिनिट लवर, जो प्यार करना बंद ही नहीं करता है, आप उसको कितना भी बोलो वो कहेगा मैं ही तो हूं जो तुम बनाऊ, मैं प्यार कैसे बंद करूं। इनफिनिट लवर, पूरी रामायण यू कैन सी लाइक दैट, कि राम और सीता का अवतरण एक सेंस में देखा जाए तो वापस रावण वो अपने जय विजय को वापस ले जाने के लिए हुआ, माता सीता चली जाती है, राम जाते हैं, सारा प्रयास करते हैं, अंत में दे हैव टू ब्रिंग बैक, पूरा युद्ध होता है, इट्स ए टेल ऑफ डिवाइन लव, अंत में तो वो वापस आए ना वो तीन जन्मों के बाद। तो द मास्टर ऑफ मैन एंड इज इन्फिनिट लवर, कहाँ मिलेंगे भगवान, ही इज क्लोज टू आवर हार्ट्स, हैड वी विजन टू सी, हम क्यों नहीं देख पाते, वी आर ब्लाइंड विद अवर प्राइड एंड अवर पॉम्प ऑफ आवर पैशंस एंड द पॉम्प ऑफ आवर पैशंस, वी आर बाउंड इन अवर थॉट्स वेयर वी होल्ड अवर सेल्फ फ्री। बहुत पहले की बात है, पटियाला की, ये 87 की बात होगी, मैं तो नया नया मुर्गा। तो एक सज्जन कह रहे थे, अब होता है बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, कहते हैं शोरबिंदु से सो बट इन माय ओपिनियन, और उन्होंने पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है वो भी पढ़ा है, तो मैंने कहा भैया देखो पढ़ा तो मैंने भी बहुत कुछ है, तुमसे ज्यादा ही पढ़ा है दो तीन गुना, लेकिन व्हेन शोरबिंदु से सो, शोरबिंदु से सो, मैं तुम्हारी ओपिनियन होगी रखो अपने पास तुम्हारी, अब देखिए प्राइड, अरे तुम्हारी ओपिनियन की कोई वैल्यू है, बाहर से तुम देख लो, मैंने कहा कि फॉरगेट अबाउट इज इनर अचीवमेंट, जस्ट आउटवर्डली, केवल आउटवर्डली अगर हम श्री अरविंद को देखें, उनकी बैकग्राउंड एजुकेशन, उन्होंने बाहर से क्या अचीव किया, उनके साथ जब वो एज ए एजुकेशनिस्ट इन बड़ौदा, एज द राइजिंग स्टार लाइक ए मिट्योर, यानी यहां तक कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक ही व्यक्ति के बारे में आज तक ये डॉक्यूमेंटेड है, द मोस्ट डेंजरस मैन इन इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर गई उस समय कि ये अगर हैं तो डेंजर है, और उसके बाद जग जा ही रहे, कुछ नहीं उनकी केवल बाहर की अचीवमेंट, 35 वॉल्यूम ऑफ सच राइटिंग, ईच वॉल्यूम रनिंग इनटू 500 पेजेस, रात को 10 बजे से 6 बजे तक, भैया शर्म करो तुम बोल रहे हो इन माय ओपिनियन, समटाइम यू फील हु आर यू, यू फील लाइक भाई हो कौन, तुम्हारी ओपिनियन होगी, बट लुक एट द कंट्रास्ट, और ये होती है टेंडेंसी कई लोगों की, जैसे स्पिरिचुअल लाइफ पर ओपिनियन किसकी, भाई अकॉर्डिंग टू, मतलब रिस्पेक्टेड है सचिन तेंदुलकर, मे बी गॉड ऑफ क्रिकेट बट ही कांट ओपाइन ऑन एवरीथिंग, तो भाई उनके अनुसार फिल्म एक्टर, उसने ये कहा भैया ये कौन है, इनको अपना जॉब तो ठीक से आता नहीं है, इन्होंने क्या कभी मनन किया इस पर, कुछ प्रयास किया, कुछ ढूंढने की चेष्टा की, इनकी ओपिनियन की वैल्यू क्या है, पर हम लोग हैं उन पॉलिटिशियन ने ऐसा कहा, उस पढ़े लिखे कार्ल पॉपर, कार्ल पॉपर ने तो खैर फेवरेबल चीज कही है, डेविड बॉम ने भी कही, हम लोग वैलिडेशन ढूंढते हैं कि इसमें आइंस्टीन ने भी कहा, अरे आइंस्टीन नहीं करता तो कोई फर्क पड़ता? तो ये जो टेंडेंसी है ना, वहां का साइंटिस्ट ने रिसर्च की और प्रूव किया है कि श्री कृष्णा 60% डिड नॉट एग्जिस्ट, ओनली 40% एग्जिस्टेड। करने दो उसको भाई। सो उद्धव के साथ भी यही हुआ था ना। तो ये प्राइड ऑफ अर, ये जो माइंड का जो प्राइड है ना, एंड पॉम्प ऑफ अर पैशंस, गाड़ियों का कैवलकेड चल रहा है, तो हमारे अंदर ज्ञान भी आ गया। अरे एक अमीर आदमी का ऑर्डिनरी कुत्ता भी एयर कंडीशन कार में घूमता है, मर्सिडीज में, पर कुत्ता तो कुत्ता है। इट्स ओके, दिस फाइन, दिस कैवलकेड, बट दिस आइडिया ऑफ कास्टिंग, तो हम क्यों नहीं पहचान पाते? वी आर लॉस्ट, वी आर ब्लाइंड विद अवर प्राइड एंड द पॉम्प ऑफ अवर पैशंस। We are bound in our thoughts where we hold ourselves free. I have seen people, माताजी पर, अरे ये कैसे, वो कैसे, मैं भैया थोड़ी थोड़ी मतलब शर्म ही कर लो, यही मुझे आता है। आप अपने को देखो, आप कहाँ हो। You have to sometimes say this, which is very unfortunate, you don't like to belittle someone. आप खुद को देखो, आप कहाँ हो, आपने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है। और माँ और श्री अरविंद के ऊपर जिनके आप, अगर बाहरी अचीवमेंट, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, तो आप पांव की धूल भी नहीं होगे। कोई ऐसा, अब मैं ओपनली ये आई कैन से दिस, पूरी स्पिरिचुअल इतिहास में मैनकाइंड के, पूरी स्पिरिचुअल इतिहास में एक ऐसा फिगर नहीं है जिसने इतना कुछ ट्रूथ लिख करके पोर कर, मैं स्पिरिचुअल लोगों की बात कर रहा हूं, वैसे नहीं जो हर चौथे दिन पर एक किताब निकाल के मोतीलाल बनारसी दास से छपा देते हैं। उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप मिला लीजिए सारे, व्यास की 18 वॉल्यूम महाभारत की, चार वेद तो कंपाइलेशन है, तो वी शुड नॉट, टेक्निकली इट इज नॉट व्यास जी, और व्यास एक लीनियज है, इट्स नॉट वन पर्सन, और सब कंपाइल कर लीजिए तो भी श्री अरविंद भारी पड़ेंगे। हाँ, यस, 21,000 printed page, the longest epic in English language. Instead of feeling proud कि हमारे भारतीय हैं, देखो उन्होंने, और कुछ नहीं, यही मान लो, even बंगाल में उनको बस अंत में, sorry to say, टैगोरी याद आते हैं। Just imagine, I'm saying very openly, 24,000 lines of such poetry, जो संसार में, जिसके ऊपर बड़े बड़े poets ने पढ़ना, कमेंट करना, ऐसे लोगों ने क्या क्या बोला है, यहाँ तक कि उनकी केवल इंग्लिश के बारे में, वी के गोकाक जो वाइस चांसलर थे बेंगलोर यूनिवर्सिटी में एक समय, किसी ने कहा, आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड शोरबिंदोज इंग्लिश, इज इट रियली इंग्लिश? तो उन्होंने कहा, व्हाट शोरबिंदो राइट्स इज इंग्लिश, इट इज नॉट इंग्लिश दैट शोरबिंदो राइट्स। जिनके बारे में लोगों ने ऐसे से कमेंट किए, आप उनके बारे में ऐसे, वो तो बहुत विनम्र हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, राधा कृष्णन ने सारे कॉपी करके, कॉपी पेस्ट किए उनकी कितनी सारी चीजें, नेहरू जी ने, चचा जान ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दो पैसेज सीधा लेटर्स ऑन योगा से, हाफ पैसेज, तो मैंने लिखा आश्रम को कि ये तो देखिए तो चोरी है, चकारी है, इन्होंने लिखा भी, एक्नॉलेज भी नहीं किया है श्री अरविंद को, कोई उत्तर नहीं आया, लॉन्ग एक्सपेक्टेड लाइन्स। और राधा कृष्णन के बारे में जब श्री अरविंद से कहा गया, तो श्री अरविंद कहते हैं, इट्स ओके, लेट द आइडिया गो। यहां कॉपीराइट के पीछे लोग लड़ते हैं। उन श्री अरविंद को आप कैसे जान सकते हो? केवल एक ही माध्यम है, ये पोयम है, एक पोयम, उसके साथ हम लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो ले लेंगे। उस पोयम का नाम है गॉड, क्योंकि कई बार इसी में हम कैसे करें, क्या करें, कैसे मेडिटेशन करें, सीधा स्पिरिचुअलिटी मतलब मेडिटेशन, एंड योगा मींस आसन, एक माइंडसेट हो गया है। तो उनकी एक पोयम है गॉड, बड़ी छोटी पोयम है, आई रिमेम्बर इट, एनीवेज टेक इट, फिर भी चलो निकल गया तो अच्छी बात है। इससे गॉड कैसे पहचान होती, गॉड की वो तो जब आते होंगे बड़े बाजे गाजे के साथ, उनके लिए तो बहुत बड़ा मंडप लगता होगा जहाँ ऊपर बैठते होंगे, बहुत सारी मालाएं होंगी, बहुत सारे डिसाइपल्स नीचे बैठे होंगे उनके चरणों के नीचे। गॉड कैसे होंगे संसार में? दाओ, दाओ इज गॉड, दाओ हु परवेडेस्ट ऑल द वर्ल्ड्स बिलो येट सिटेस्ट अबव। नरक की अग्नि के अंदर भी जो झुलस रहे हैं, स्थापित हैं। किसी ने एक बार, वो जैन धर्म में ये मानते ना कि वो वायलेंस नॉन वायलेंस का इतना स्ट्रांग है कि कृष्ण ने भी पाप किया तो इसलिए वो 7 नरकों में चले गए। अब वो कहीं पर उन्होंने पढ़ा होगा जो भी उनके स्क्रिप्चर में लिखा है। तो मैं से पूछा कि वो तो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण नरक में है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहते हैं। कहते क्या? मैंने कहा और किसी में हिम्मत है नरक में जाने की? भाई नरक में तो भगवान की क्षमता है कि वो, और शेरविन ने लिखी अपनी पोयम में, आई मेड एन एसिग्नेशन विद द नाइट, इन द एबिस वॉज फिक्स्ड अवर रॉन्देवू, कैरिंग इन माई हार्ट गॉड्स डेथलेस लाइट, आई केम हर डार्क एंड डेंजरस हार्ट टू वो। वेदों की कहानी है ये कि मैंने तो रात से मिलने का वादा किया, रात तो दिन को नहीं आएगी क्योंकि वो तो खत्म हो जाएगी, तो रात की महानिशा की महाकंदरा में अंधकूप में मैं जगया मिलने के लिए। मेरे अंदर छिपी हुई थी भगवान की वो प्रकाश, जो नहीं मृत्यु हो सकती उसकी। क्यों गया? कहने मुझसे शादी करोगी? डार्क एंड डेंजरस हार्ट टू वू, आई एम लिटरली ट्रांसलेटिंग इट, विल यू मैरी मी? वो देखिए अब क्या उसकी दुविधा है, हाँ कहे या ना कहे। हाँ कहेगी तो उसका अस्तित्व समाप्त, तब रूपांतरित हो जाएगी, ओरिजिनल तो लाइट है, और ना कहे तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इस ना के बीच में। तो वो दाव हु परवेडेस्ट ऑल द वर्ल्ड्स बिलो येट सिटेस्ट अबव। शेरविंदी आती है ना, हम सबको कहां से कहां पकड़ लेते हैं। मास्टर ऑफ ऑल हु वर्क एंड रूल एंड नो, सर्वेंट ऑफ लव। प्रेम के लिए तो वो कुछ भी कर लेंगे। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दुर्गर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सखाई। प्रेम के लिए वो सबरी के झूठे बेर खा रहे हैं। श्री अरविंद माता जी की तो ऐसी सी कहानियां हैं, किसी ने आम भेजा, माँ को, माँ आम खाती नहीं थी, माँ ने कहा इसको इमीडिएटली काट करके लाओ। खाती नहीं थी मतलब आम मुख्यतः भारत की एक चीज है और फ्रांस में यू डोंट ग्रो अप ईटिंग मैंगोस, तो काट के बहुत अप्रिशिएट किया। कोई भी चीज, कोई छोटी सी भी चीज देता था, माँ को देखिए कैसे उसको ग्रहण करके, हाउ शी वुड अप्रिशिएट, ओ माई चाइल्ड। एक एक जगह आप उनके देखो, लगता है कि यही है संसार में माँ का सबसे प्रिय, तो दूसरा दिखाएगा तो उसमें भी आपको दिखेगा। छोटी से छोटी चीज में उन्होंने जो प्रेम उड़ेला है, इट्स अनइमेजिनेबल। सर्वेंट ऑफ लव, प्रेम से बांध सकते हो। Thou who disdainest not the worm to be, जो कीड़ा अभी बन रहा है, बनने वाला है, उसको भी आप ये नहीं कहते हैं तुच्छ कीड़ा। Thou who disdainest not the worm to be, nor even the clod, मट्टी को भी आप तिरस्कार नहीं करते हैं। Therefore we know by that humility That thou art God. तीन चीजें श्री अरविंद की माता जी कहती हैं, we should always remember. एक कहती हैं श्री अरविंदोस compassion. Really, अगर आप देखें तो सारी तपस्या वो मनुष्य के लिए कर रहे हैं, पृथ्वी के लिए, वरना क्या जरूरत थी? वासुदेवम सर्वम इति के बाद तो बस जाते, लेक्चर देते, सारी दुनिया उनके चरणों में होती है। दूसरी चीज इज ह्यूमिलिटी। आप देखेंगे ना शेरविंद को तो कई जगह पर गिवन हिज स्टेचर इनवर्डली एंड आउटवर्डली, कहीं पर कोई एसर्शन नहीं है इसका। मानो एक बच्चे की तरह है, बैठे हुए हैं और जो चीज जब आनी है, ये नहीं कि बाय द वे तुम्हें मालूम है ये आश्रम मेरे नाम पर है, तुम लोग थोड़ा मेरा तो ध्यान रख लो, कुछ नहीं, ऐसे बैठे बैठे हैं। जब ये लोग बैठ करके, कई बार ये कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, शेयरमैन बैठे हैं वो ध्यान, ये चार पांच लोगों का यही काम होता था, दे वेयर इन अटेंडेंस, पर ये क्या कभी वो कोई कार्टून पढ़ रहे हैं, कोई ये आपस में डिस्कस भी कर रहे हैं। माँ एक बार उनको कहती है कि ऐसे मत करो। श्री अरविंद तो उनके थॉट सब कुछ उनके अंदर आ रहे हैं, ये नहीं कि वो ऑब्लिवियस हैं, पर श्री अरविंद अपने कभी एक बार भी नहीं, कैन यू बी ए लिटिल लेस लाउड। माता जी की भी अंदर वही देखो, नीचे बच्चे लोग रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहे हैं, जो अभी मेडिटेशन हॉल है जहां लोग सीरियसली बैठते हैं, वहां रिंगा रिंगा रोजेस बच्चे खेलते हैं। और एक बार केवल माँ आई ये कहने कि इन आफ्टरनून कैन यू जस्ट बी मेक ए लिटिल लेस नॉइज बिकॉज पवित्र आई इज डिस्टर्ब, बिकॉज पवित्रदा को उस समय कैंसर हो गया था, तो अपने लिए नहीं बोल रही हैं। अब देखिए कौन ये कर सकता है। और तीसरा कहते हैं परफेक्ट जेंटल मैनलीनेस। अगर कोई उदाहरण देखना है तो वो स्टोरी है ना कि उन्होंने एंड ऑनरअप लेके, आई सपोज दिस हैज टू बी पोस्टेड, तो निरुद्धा कहते हैं 100 हंग्री हैंड्स विल सीज, सर बोलो हमें, हम तैयार हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं, कभी किसी को ऑर्डर देना, वो जब कोशिश कर रहे हैं उनसे टेबल फैन नहीं चल रहा है तो वो देख रहे हैं, वो चंपक लाल जी वो उठे, उन्होंने कहा सर आई विल डू इट। अब शेरविंद इंटेंटली देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, करा चल गया। तो शेरविंद ओह दैट सिंपल, दैट सिंपल, मुझे नहीं समझ आया, दैट सिंपल। तो ये है शेरविंद, क्या कहूं मैं, दिव्यता का दर्शन नहीं, दिव्यता का मूर्त रूप है। ये हम सबका परम सौभाग्य है कि उनके सानिध्य में कुछ क्षण बैठने का अवसर मिल रहा है। एक रियली इट इज ए ग्रेट प्रिविलेज दैट हाउ हिज मियर प्रेजेंस, ही हुम वी सॉ यस्टरडे इज हियर अपॉन अर्थ। उनकी सानिध्य में कुछ क्षण सांस लेने का अवसर मिल रहा है। हम विल नाउ जस्ट स्टे क्वाइट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स एंड देन वी विल leave. Next session, I promise, will be question answers. Okay. I hope I keep my promise.